नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर टायर फूंक कर अपना विरोध जताया, जबकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताएं पुलिस से भिड़ गईं। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर निशाना साधा। इस बीच राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये 8 साल का काला अध्याय है। इतिहास में इस 8 साल को अगर देखा जाएगा तो ये काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें संवैधानिक धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है और पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं और तनाव में हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। टेलीकॉम कंपनियों के साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके बाद बोलीदाताओं को, जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। कैबिनेट के फैसले के दौरान कहा गया कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। मंत्रिमंडल के नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म किया। सफल बोलीदाता 5G स्पेक्ट्रम के लिए 20 EMI में भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि डॉट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का प्रस्ताव रखा था। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने कथित विवादित ट्वीट के मामले में बुधवार को यहां भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए, एक अधिकारी ने जानकारी दी। भिवंडी पुलिस ने जिंदल के खिलाफ यहां दर्ज मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें समन भेजा था। अधिकारी ने बताया कि वह बुधवार को पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने बताया कि जिंदल से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। भाजपा ने पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारत तथा खाड़ी देशों में आक्रोश के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। वहीं दिल्ली भाजपा की मीडिया इकाई के प्रमुख जिंदल को निष्कासित कर दिया गया था। भिवंडी पुलिस ने मामले में सोमवार को शर्मा को भी समन भेजा था। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस से 4 हफ्ते का समय मांगा था। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी सिलसिले में विपक्ष को एकजुट करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार दोपहर 3 बजे एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही ममता बनर्जी को झटका लगा जब टीआरएस ने इस बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अगर टीएमसी का न्योता आता तो भी कांग्रेस की वजह से वह इस बैठक में नहीं जाते। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक पर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुझे नहीं बुलाया गया, अगर बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाता, इसकी वजह कांग्रेस है। हमें खरी खोटी सुनाने वाली TMC बुलाती तो हम इसलिए नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने बैठक में कांग्रेस को बुलाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को गोवा के नए राजभवन की आधारशिला रखी। इस इमारत का निर्माण मौजूदा राज्यपाल भवन के परिसर में किया जा रहा है, जो तत्कालीन पुर्तगाली शासन के दौरान निर्मित 450 साल पुरानी संरचना है और एक पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति कोविंद ने बुधवार सुबह नए परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक मौजूद थे। देश में एक दिन में COVID-19 के 8,822 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,45,517 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 53,647 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 15 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,792 हो गई। देश में COVID-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 53,637 हो गई, जो कुल मामलों का 0.12% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,089 की बढ़ोतरी हुई। संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 98.66% है। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 2% जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 2.35% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 195.5 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।